श्रीमद्भागवतम तीसरा स्कंद सातवां अध्याय के 38वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। पुरुषस्य च संस्थानम् स्वरूपम् वा परस्य च ज्ञानम् च नैगमम् यत्तत् गुरु शिष्य प्रयोजनम्। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जीवों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयाँ हैं, उनके स्वरूप क्या क्या हैं, वेदों में ज्ञान के क्या विशिष्ट मूल्य हैं और गुरु तथा उनके शिष्यों की अनिवार्यताएं क्या हैं। तात्पर्य प्रयोजन शब्द ज़्यादा अच्छा है अनिवार्यता से, है ना। तात्पर्य सारे जीव स्वाभाविक रूप से भगवान के दास हैं और भगवान हर एक से सभी प्रकार की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं। यह स्पष्ट घोषणा की गई है भगवद गीता 5:29-5:29 कि भगवान सारे यज्ञों तथा तपस्याओं के लाभों के परम भोक्ता, समस्त व्यक्त वस्तुओं के स्वामी तथा सारे जीवों के मित्र हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सुहृतम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। यही उनकी असली पहचान है। अतः जब जीव भगवान के इस परम स्वामित्व को स्वीकार करता है और उसी भाव से कार्य करता है तो वह अपने असली स्वरूप को धारण कर लेता है। जीव को ज्ञान के इस मानदंड तक ऊपर उठाने के लिए आध्यात्मिक संगति की आवश्यकता होती है। प्रमाणिक गुरु की इच्छा होती है कि उसके शिष्य भगवान की दिव्य सेवा करने की विधि जाने और शिष्य भी ये जानते हैं कि उन्हें किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ईश्वर तथा जीव के नित्य संबंध के विषय में सीखना चाहिए। इस दिव्य ज्ञान का वितरण करने के लिए मनुष्य को वैदिक ज्ञान के प्रकाश के बल पर सांसारिक कार्यकलापों से अवकाश ले लेना चाहिए, रिटायरमेंट लेनी चाहिए। इस श्लोक के सारे प्रश्नों का यही सार समाहार है। ओम अज्ञान तिमिरंजस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वप्रान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीतापत्कमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिणयसहितम् श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललितं श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत मस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विदुर और मैत्री जी के बीच में संवाद चल रहे हैं और ये श्लोक किसने बोला है? ये श्लोक क्योंकि प्रश्न है तो प्रश्न कौन पूछ रहा है? प्रश्न विदुर जी पूछ रहे हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि पिछले इस अध्याय के 15वें श्लोक से विदुर जी प्रश्न पूछते जा रहे हैं। तो विदुर जी 12 महाजनों में से एक है, धर्मराज है, लेकिन फिर भी अवसर मिलने पर, उन्होंने एक उचित अधिकारी मिलने पर विदुर जी बिना किसी संकोच के विभिन्न विषयों पर जिज्ञासा कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। और उन्होंने पूछा कि भगवान का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, भगवान के क्या कार्यकलाप हैं, जो लोकों का वितरण 14 लोक हैं वो कैसे बने हैं, उच्च लोकों में जीव कैसे जाता है, निम्न लोकों में कैसे जाता है, पसीने से जो जीव कैसे उत्पन्न होते हैं, अंडे से कैसे उत्पन्न होते हैं, गर्भ से कैसे उत्पन्न होते हैं, क्या उसके कारण है, आप पीछे बैठ जाओ, उसके क्या कारण है, और वर्ण संकर लोगों के बारे में पूछ रहे हैं, और पूछ रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष इसके विभिन्न कारणों का और उनके विरोधी कारणों का भी आप वर्णन करें। श्राद्ध कैसे करते हैं, पितरों को कैसे संतुष्ट किया जाता है, इन विषयों में भी आप प्लीज़ हमें बताएं। कुएं खुदवाने का क्या लाभ है, सकाम कर्मों की क्या स्थिति है। तो आप ये सोच सकते हो कि विदुर जी तो मतलब शुद्ध भक्त हैं, फिर वो सकाम कर्मों के बारे में, कुआं खुदवाने इत्यादि के बारे में मतलब क्यों पूछ रहे हैं। नहीं, सो इस श्लोक में, और आप देखेंगे इसके बहुत ही सटीक उत्तर जो है आगे मैत्रेय जी आगे के श्लोकों में देंगे। और यहाँ पर इस 38वें श्लोक में विदुर जी ने कहा कि भगवान और जीव का क्या स्वरूप है, तो चैतन्य चरितमृत में हमें पता चलता है जीव स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, है ना। तो जो जीव है वो भगवान का नित्यदास है, भगवान की तटस्थता शक्ति है, हाँ। और जीव का जो कार्य है वो भगवान की सेवा में जुड़ना है, और भगवान की सेवा में क्यों जुड़ना है, क्योंकि भगवान ही वे व्यक्ति हैं, भगवान ही वे आश्रय हैं जो सभी प्रकार के जीवों से सभी प्रकार की सेवा स्वीकार कर सकते हैं। भगवान में ये शक्ति है, और किसी व्यक्ति में और किसी भी जीव में ऐसी शक्ति नहीं मिलती। सभी प्रकार की सेवा का एक अर्थ ये भी हो सकता है कि भगवान विभिन्न प्रकार के रसों में, हाँ, सो कुल मिला के कितने रस हैं, हाँ कितने रस हैं, क्या 10, 5 और सो 12 तरह के रस हैं, हाँ 5 मुख्य रस हैं और 7 गौण रस हैं, है ना। तो जब आप 5 रसों की बात करते हैं तो वो 5 रस जो हैं शांत दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य, लेकिन इसके अलावा 7 और भी गौण रस हैं, सो जिसमें विभत्स है, वीर्य है, इत्यादि रस हैं। इसका वर्णन आपको चैतन्य चरितमृत में बहुत विस्तार से मिलता है। सो ऐसा नहीं है कि भगवान केवल मुख्य शांत दास्य साख्य वात्सल्य में ही सेवा स्वीकार करते हैं, भगवान गौण जो रस हैं उसमें भी भगवान सेवा स्वीकार कर लेते हैं। कोई भगवान से ईर्ष्या करता है और ईर्ष्या में भगवान का स्मरण कर रहे लगाता है तो भगवान उसे भी सेवा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। कोई भगवान को मारने का प्रयास करता है लेकिन मारने के लिए भगवान की माता का स्वांग करें अगर कोई, तो भगवान उसमें भी सेवा स्वीकार कर लेते हैं, जैसा पूतना के केस में, पूतना के प्रसंग में हमें पता चलता है। तो पूत का मतलब होता है शुद्ध, और पूतना का मतलब है जो शुद्ध नहीं है। तो जो शुद्ध नहीं है भगवान उनसे भी सेवा स्वीकार कर लेते हैं। ये भगवान का विशिष्ट गुण है, ये भगवान का बहुत ही विशेष गुण है कि साफ सुथरे सच्चे व्यक्ति से हर कोई सेवा स्वीकार कर रहा है, लेकिन भगवान ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने शत्रु की भी सेवा स्वीकार करते हैं और उसको फल प्रदान करते हैं। आप उसके अनेक उदाहरण श्रीमद् भागवतम में देख सकते हो। शिशुपाल, दंतवक्र, पौंड्रक, पौंड्रक ने तो यही बोल दिया था कि तुम नकली वासुदेव हो, मैं असली हूँ। लेकिन क्योंकि वो सदैव भगवान के चिंतन में लीन था, चाहे प्रतिकूल भाव से भी था, तो भी भगवान ने सेवा उसकी स्वीकार की और उसको मोक्ष प्रदान किया। इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान सभी से सभी प्रकार की सेवा स्वीकार कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जो श्रील प्रभुपाद ने ये स्टेटमेंट यहाँ पर कही है, इस पर हम और भी मनन कर सकते हैं। सर्वलोक महेश्वरम, सुहृतम सर्वभूतानाम। क्यों भगवान स्वीकार कर लेते हैं? क्योंकि जीव अनादिकाल से भगवान के विमुख होकर, अनादिकाल से कष्ट भोग रहे हैं, अनादिकाल से तरह तरह के नाना प्रकार की योनियों में कदर्य भक्षण कर रहा है, जो खाने योग्य नहीं है वो भी खा रहा है। लोग मुंह से खाते हैं, लेकिन ऐसी भी योनि है जो पैर से खा रही है। पैर से कौन खाता है आपको पता है? पैर से कौन खाता है? पौधे, पादप। उनका एक, पौधों को संस्कृत में पादप बोलते हैं। पादप का मतलब जो पैर से भोजन लेता है। तो जड़े क्या हैं? पौधों के, वृक्षों के पैर हैं, नहीं, पैर से भोजन करते हैं। ज़्यादातर जीव गूदा के जो रास्ते मल त्याग करते हैं, लेकिन ऐसे भी जीव हैं जो मुंह से मल त्याग कर रहे हैं, वो कौन है? चमगादड़, है ना, उल्टा लटका होता है ना, तो उल्टा लटका हुआ है तो ऊपर कैसे जाएगा मल, नीचे ही आता है वो, तो मुंह से मल त्याग करता है। और नाना प्रकार की योनि में जो है जीव भटक रहा है और तरह तरह के दुख कष्ट भोग रहा है। तो किसी ना किसी प्रकार से अगर जीव भगवान के बारे में सोच ले, चाहे प्रतिकूल भाव से ही सोच ले, भगवान सेवा के रूप में उसे स्वीकार कर लेते हैं। भगवान को निमित्त न मानकर भी अगर भगवान का स्मरण कर लिया तो भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अजामिल के प्रसंग में हमें मिलता है, अजामिल अपने पुत्र को ही पुकार रहा था नारायण, लेकिन भगवान ने उसको भी स्वीकार कर लिया। तो जब सुखदेव गोस्वामी को ये सब बातों का पता चला तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि कौन है ऐसा व्यक्ति जो इतने दयालु भगवान को छोड़कर किसी और की शरण लेगा? ऐसा कौन व्यक्ति है जो ऐसे परम दयालु, परम करुण भगवान जो उनके वक्ष पर प्रहार कर रहे हैं तो उनसे पूछ रहे, चोट तो नहीं लग गई आपको? क्योंकि मेरे जो छाती है, मेरा वक्ष है, वो वज्र के समान कठोर है, आपका जो पैर है वो तो बहुत ही कोमल है, तो वो टकरा गया मेरे वक्ष स्थल से तो अवश्य आपके पैरों में चोट लगी होगी, लाइए मैं आपके पैर दबा दूँ। तो ऐसे परम दयालु, परम करुण भगवान को छोड़कर कौन किसी दूसरे व्यक्ति की शरण स्वीकार करे? ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति है? नहीं। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जाने कि जीव का स्वरूप क्या है और भगवान का क्या स्वरूप है, और वो जानने की हमें ताकत, जानने की क्षमता हमें पर्याप्त होगी गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित करने से। सो हम देखते हैं कि हमारे पूरी गुरु परंपरा जो है, जितने भी आप शास्त्र उठा के देख लीजिए, चाहे भगवद गीता है, चाहे महाभारत है, चाहे भागवतम है, चाहे गरुड़ पुराण, नरसिंह पुराण और मत्स्य पुराण, वराह पुराण, जितने भी हमारे वैदिक ग्रंथ हैं वो सब क्या है, प्रश्न और उत्तर है। उसमें विभिन्न भक्तों ने विभिन्न भक्तों या भगवान से प्रश्न पूछे हैं और उन प्रश्नों के उत्तर जल्दीबद्ध किए गए, तो हमें विभिन्न प्रकार के ग्रंथ प्राप्त हुए। सो गुरु और शिष्य परंपरा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या गुरु और शिष्य, क्या गुरु बनाना बहुत आवश्यक है, क्या बिना गुरु के काम नहीं चल सकता? तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, बिना गुरु के काम नहीं चल सकता, गुरु बनाना परम आवश्यक है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और इसके प्रमाण में श्री प्रभुपाद ने मुंडक उपनिषद से एक श्लोक कोट किया, तद विज्ञानार्थम सगुरु एवा अभिगच्छे। तो प्रभुपाद ने कहा एव अभिगच्छे का मतलब है मस्ट, करना ही पड़ेगा, कोई भी विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं सोच सकते कि चलो बहुत से लोगों को गुरु की आवश्यकता हो सकती है लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति कह रहे हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता है, हम उसकी बात क्यों सुने? वो भी तो गुरु बनने का प्रयास कर रहा है, गुरु शिक्षा दे रहा है, तो ये व्यक्ति भी तो कह रहा है कि गुरु की क्या आवश्यकता है, तो ये भी तो शिक्षा है, तो हम इसकी बात क्यों सुने? हम इसकी बात नहीं सुननी चाहिए। नहीं, कितना प्रभुपाद इतना परफेक्ट लॉजिक देते हैं प्रभुपाद, उसी की बात को उसी के तर्क से काटना, ये क्षमता प्रभुपाद में पूरी तरह से जो है प्रकट हो रही थी। प्रभुपाद दूसरे जो भी प्रभुपाद से तर्क इत्यादि करने आते थे, प्रभुपाद उन्हीं की बात से उन्हीं को समझाते थे, है ना, ये प्रभुपाद की विशेषता है। और प्रभुपाद ने इस तकनीक से प्रभुपाद ने हजारों लोगों को बदल दिया, उनका जीवन बदल दिया, उनका हृदय परिवर्तन कर दिया। यही गुरु की जो है क्वालिटी है, यही गुरु का गुण है। गुरु का प्रयोजन क्या है यहाँ पर पूछ रहे हैं विदुर जी कि गुरु का क्या प्रयोजन है। गुरु का प्रयोजन है कि वो शिष्य को भगवान की सेवा में लगाए। हाँ, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो मुंडक उपनिषद में कहा है तद विज्ञानार्थम स गुरु एवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कि जो गुरु है वो भारी होता है। हाँ, गुरु की बात को हल्के ढंग से नहीं लिया जा सकता, तो वो गुरु में वो भार, वो हैवीनेस, वो कहाँ से आ रही है? ब्रह्मनिष्ठम मुंडक उपनिषद कह रही है कि जो ब्रह्म की निष्ठा है, जो परम भगवान में गुरु की श्रद्धा है, गुरु की एक निष्ठता है, उससे गुरु के अंदर वो हैवीनेस, वो भार आ रहा है कि गुरु का जो भी वाक्य है, एक एक शब्द, एक एक वाक्य जो गुरु का है वो वेद वाक्य के समान है और उसे हल्के ढंग से कभी भी नहीं लेना चाहिए। और गुरु जो है श्रोत्रियम मतलब ऐसा नहीं है कि गुरु बोले कि मेरा मत ये है, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति ऐसा बोले उसको इमिजिएटली रिजेक्ट कर देना चाहिए, इसका मतलब वो प्रमाणिक गुरु नहीं है। श्रोत्रियम का मतलब है जिसने अच्छी तरह से सुना हुआ है। किससे सुना हुआ है? अपने गुरु से सुना हुआ है, है ना। तो और उसके गुरु ने कहाँ से सुना हुआ है? उसके गुरु ने अपने गुरु से सुना हुआ है, कोई भी अलग बात नहीं कर रहा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखो जो भगवान कृष्ण ने बोला और जो व्यासदेव जी ने लिपिबद्ध किया और आज तक 5,500 साल बीत चुके हैं, हाँ, इसी बीच हजारों गुरु आए और चले गए, नहीं, लेकिन क्या संदेश बदला? संदेश वही है, मैसेज वही है, नॉलेज वही है। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के ज्ञान को जो उन्होंने हजारों वर्ष पहले दिया कुरुक्षेत्र में, और उस ज्ञान को जो व्यक्ति यथारूप प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है, श्रद्धा रखता है। कई बार होता है कि क्षमता होती है लेकिन श्रद्धा नहीं होती, तो उसको ज्ञान को पढ़ लिया फिर भी अपना ही कुछ मत निकाल दिया, जैसे हिरण्यकश्यपु कर रहा था। जब हिरण्याक्ष जो है, हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई तो उस समय सब लोग, घर के लोग बहुत परेशान थे, रो रहे थे। तो हिरण्यकश्यपु ने उस समय सांत्वना दी अपने परिजनों को, और अब वो आप पढ़ेंगे भागवतम में तो पूरा वेद ही उसके अंदर सारा उस जो हिरण्यकश्यपु ने बोला है। लेकिन वो वेदों को पढ़ के समझ के उसका निष्कर्ष उसने क्या निकाला, उसका निष्कर्ष उसने ये निकाला कि जो जिसने हिरण्याक्ष का वध किया है मेरा शत्रु है, मैं उसको मार दूंगा। सो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये उसी प्रकार है जिस प्रकार गंगा के तट पर अनेक वृक्ष होते हैं, और वो वृक्ष किसका पानी पी रहे हैं, वो वृक्ष गंगा जी का ही पानी पी रहे हैं। लेकिन कई पेड़ जो है मीठे फल देते हैं और कई पेड़ कड़वे फल देते हैं, पानी गंगा जी का ही सब पी रहे हैं। हाँ, सो इसी प्रकार सब लोग वेदों को पढ़कर ही ज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का और कोई माध्यम नहीं है। लेकिन बहुत से लोग उसका सही निष्कर्ष निकालते हैं और बहुत से लोग उसका गलत निष्कर्ष निकालते हैं। तो सही निष्कर्ष कौन निकालते हैं, सही निष्कर्ष वो व्यक्ति निकालते हैं जो अच्छे शिष्य हैं। जो व्यक्ति अपने गुरु में श्रद्धा रखता है, जो व्यक्ति अपने गुरु की बात को हल्के ढंग से नहीं लेता, वो व्यक्ति वेदों के निष्कर्ष को समझ जाता है। और जो व्यक्ति अपने आप से वेदों के निष्कर्ष को, शास्त्रों के सार को समझने का प्रयास करता है, वो भ्रमित हो जाता है। और युधिष्ठिर महाराज ने महाभारत में कहा कि तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, बहुत सारे वेद, बहुत सारे शास्त्र पढ़ के आप उसके निष्कर्ष को नहीं समझ सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी विरोधाभासी बातें भी कही गई हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगी कि यहाँ पे तो ये लिखा है, वहाँ पे वो लिखा है, कैसे इसका सामंजस्य बिठाएं। और तर्को और प्रतिष्ठा, तर्क से आप सत्य तक नहीं पहुँच सकते, सत्य तक पहुँचने के लिए तर्क की नहीं श्रद्धा की आवश्यकता है। तो जहाँ पर भी हमारे शास्त्रों में, जैसे हमने बताया कि सारे शास्त्र ही क्वेश्चन आंसर हैं, तो लेकिन वो प्रश्न उत्तर किस मनोभाव में पूछे गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पूछे गए हैं समझने के लिए, ये प्रश्न इसलिए नहीं पूछे गए कि सामने वाले को शर्मिंदा करें, सामने वालों को हराएं, देखो तुम्हें इसका उत्तर नहीं आता, गलत उत्तर दे दिया तुमने। सो प्रश्न पूछने का क्या मंतव्य है, क्या किस उद्देश्य से, किस प्रयोजन से प्रश्न पूछा जा रहा है, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि जहाँ पर भी तर्क आ जाएगा, जहाँ पर भी श्रद्धा का अभाव होगा, वहाँ पर हम उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए युधिष्ठिर महाराज वन पर्व में कह रहे हैं, महाभारत के वन पर्व में, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासा ऋषि यस्य मतम न भिन्नम। सो आमतौर पर अगर कोई व्यक्ति प्रसिद्ध होना चाहता है तो एक नई फिलॉसफी निकाल देता है, वो बोलता है कि अगर पिछली फिलॉसफी कोई अगर हम बात करेंगे तो हमारी बात को कौन सुनेगा, वो बोलेंगे जो पहले बोल के गए हैं उसी के पढ़ लेंगे, तुम कहाँ से बीच में आकर टपक पड़े। लेकिन अगर आप देखें तो चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा, हाँ, गोदावरी नदी के तट पर, तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन होता है, तो रामानंद राय ने क्या उत्तर दिया, सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति होता है भगवान का भक्त। और भगवान के भक्त की क्या विशेषता होती है, जो उसने सुना उसी को दोहराता है, कॉपी पेस्ट करता है, जो सुना उसी को दोहरा रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति प्रसिद्ध होना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि पूरे संसार में लोग उसको जाने, तो उसको कुछ नया सिद्धांत प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो भगवान को अपने गुरु के प्रति अगर समर्पित हो और उन्हीं की बात को यथारूप दोहराए, तो पूरा संसार उनकी जय जयकार करेगा। जैसे प्रभुपाद की, प्रभुपाद ने कभी भी यह दावा नहीं किया कि मैं कुछ अलग से बोलने का प्रयास कर रहा हूँ या मैंने बहुत तपस्या की तो उसके फलस्वरूप मुझे कुछ एक नई चीज़ मिली है, हाँ, और ये नई चीज़ बहुत कारगर है। प्रभुपाद ने कभी ऐसा दावा नहीं किया। प्रभुपाद ने बोला कि आई एम हम्बल सर्वेंट ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर, मैं अपने जो मेरे गुरु हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मैं उनका बहुत ही नगण्य, बहुत ही तुच्छ सेवक हूँ। मैं, मुझ में शक्ति नहीं है कुछ भी बोलने की, लेकिन जो मैंने उनसे सुना मैं उसी को दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ। वो भी अच्छी तरह से नहीं दोहरा पा रहा, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि जो मैंने उनसे सुना मैं उसको दोहरा रहा हूँ। और क्योंकि और इसी विशेषता के कारण प्रभुपाद का यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। एवे यश भुषुक त्रिभुवन, तीनों लोकों में प्रभुपाद का यश फैला है, क्योंकि प्रभुपाद ने कुछ अलग से कुछ मत स्थापित करने का प्रयास नहीं किया, जो सुना उसी को दोहराया। तो जो लोग प्रसिद्ध होना चाहते हैं और प्रसिद्ध होने के लिए नया सिद्धांत लेके आते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने कहा बच के रहना, आप तर्क से नहीं समझ सकते, आप बहुत सारे किताबें पढ़ के, बहुत सारे शास्त्र पढ़ के सत्य को नहीं समझ सकते। और कोई व्यक्ति आया कोई नया सिद्धांत लेके, उसकी शरण लेके भी नहीं समझ सकते। ना साव ऋषि यस्य मतम ना भिन्नम, कि कोई आया कि देखो मेरे पास एक नई चीज है, आप उसके पास जाओगे धोखा खा लोगे। तो फिर वो सत्य कैसे पता चलेगा, वो सत्य कहाँ पर है? तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि जो सत्य है, हाँ, वो सत्य जो है वो भक्तों के हृदय में छुपा हुआ है। हाँ, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, जो भक्त हैं उनके हृदय में वो सत्य छुपा हुआ है। तो शिष्य का क्या कर्तव्य है? शिष्य का कर्तव्य है महाजनों येन गता सपन्ता, शिष्य का कर्तव्य है कि वो महाजन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो निरंतर भगवान के नाम रूप गुण लीला शिक्षा के प्रचार में लगे हुए हैं, उनकी शरण लें, उनकी शरण स्वीकार करें। अगर उनकी शरण स्वीकार करेंगे तो वो उस परम सत्य को समझ पाएंगे, वो जान पाएंगे कि भगवान का स्वरूप वास्तव में क्या है और जीव का स्वरूप क्या है। और प्रभुपाद यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ी सी मुश्किल बात कह रहे हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत ज्ञान के बल पर प्रचार करने के लिए जो है जो भौतिक कार्यकलाप है उससे अवकाश लेना चाहिए। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि जो भक्ति में आ गए गुरु और भगवान की कृपा से, उन्हें प्रयास करना चाहिए कि भौतिक कार्यों से अवकाश ले और अपना जीवन भगवान के संदेश को, भगवान की महिमा को पूरे संसार में फैलाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दे, है ना। अगर भगवान का स्वरूप जान लिया, जीव का स्वरूप जान लिया, गुरु का प्रयोजन और शिष्य बनने का प्रयोजन जान लिया, अगर जानकर कुछ किया नहीं तो फिर जानने का फायदा ही क्या है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि देखो आप जानने का प्रयास तो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जानने का प्रयोजन क्या है? वो जानने का प्रयोजन है कि आप अपने आप को पूरी तरह से भगवान की सेवा में समर्पित करो। लेकिन ये एकदम से अचानक नहीं होता है, इसके लिए धीरे धीरे प्रयास करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। आप सोचो कि हम एकदम से हम सब कुछ छोड़ के और अपने आप को भगवान की सेवा में समर्पित कर दें तो ये बहुत कठिन होगा। आप छोड़ भी देंगे तो भी, क्योंकि हमारा मन पूरी तरह से अभी भगवान में और गुरु में निवेशित नहीं है, तो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद हमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। आप देख सकते हैं बहुत से लोग भक्ति में जुड़ते हैं और बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे वापस भौतिक कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि उनमें कोई दोष है या बहुत ही पतित लोग थे, ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरी तरह से तैयारी अभी नहीं की थी, कुछ थोड़ा जल्दबाजी कर दी आप कह सकते हो, थोड़ा और समय लेते और उसके बाद वो अवकाश लेते तो हो सकता है भक्ति में और अधिक समय तक वो लोग टिके रहते अच्छी तरह से। प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रयास करो, तैयारी करो, अपने आप को तैयार करो कि आप जो है घर को, अपने कारोबार को आप छोड़ सको और पूरी तरह से भगवान की सेवा में जुड़ सको। तो आप बोलेंगे कि बुढ़ापे में अगर हमने छोड़ा भी तो भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारी है, बुढ़ापा अपने आप में ही एक प्रॉब्लम है, तो कैसे उसको हम उसका सामना कर पाएंगे? बुढ़ापे में तो विशेष रूप से हमें आवश्यकता होती है परिवार वालों की, ताकि वो हमारी मदद कर सकें। जब हाथ पैर काम नहीं कर रहे होते उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ये समझना चाहिए कि जो सुख और दुख हमारे भाग्य में लिखा है, हम घर में रहें या नहीं रहें, हमें भोगना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि घर में रहकर दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। कई लोग तो घर में रह के ज़्यादा दुखी रहते हैं। मेरे एक रिश्तेदार हैं, तो घर से बहुत आसक्त थे, वो पूरा जीवन अपने बच्चों की सेवा में लगा दिया, और कई बार तो पूरा खानदान सोचता था यार कितने स्वार्थी हैं, अपने परिवार के बारे में सोचे जा रहे हैं, दूसरे के बारे में सोचते नहीं, हमेशा यही सोचते हैं कि मुझे मेरे बच्चों को क्या फ़ायदा मिलेगा। उनके तीन बच्चे थे, लेकिन तीनों में से किसी ने भी उनका अंत समय में ध्यान नहीं रखा, और जब उनकी मृत्यु हुई तो बिल्कुल एक कोठरी में उनको रखा हुआ था और कई घंटे तक किसी को पता ही नहीं चला कि वो मर गए हैं, और उनकी लाश के ऊपर चूहे कूद रहे थे। और जब वो शाम को सफाई करने वाली आई तो उसने देखा कि मरे पड़े हैं और ऊपर चूहे कूद रहे हैं, तो जाके उनके बच्चों को बताया, तो उन्होंने भी फटाफट आकर साफ सफाई करके, क्योंकि समाज में दिखाना पड़ता है ना कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं। सो क्या उन्होंने सुख भोगा घर में रह गए? ऐसा नहीं है कि हम अगर घर में रहेंगे तो सुख मिलेगा, बाहर निकलेंगे तो दुख मिलेगा। जो आपके भाग्य में है वो मिलेगा ही, सुख और दुख। लेकिन अगर हम उचित समय आने पर गुरु और वरिष्ठ भक्तों के परामर्श से अगर हम भौतिक कार्यों से अवकाश लेके भगवान की सेवा में जुड़ेंगे तो क्या भगवान हमारा ध्यान नहीं रखेंगे? भगवान हमारा अवश्य ध्यान रखेंगे। तो क्या अवकाश लेने पर दुखों को सामना नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं स्वयं प्रभुपाद ने दिखाया कि कितने दुख प्रभुपाद ने, कितने शारीरिक कष्ट प्रभुपाद को आए, लेकिन क्या प्रभुपाद कभी विचलित हुए? प्रभुपाद तो चलो शुद्ध भक्त हैं, महाभागवत हैं, भगवान के नित्य पार्षद हैं। प्रभुपाद की बात को इस विषय में लाना, आप बोलोगे प्रभुपाद के ऊपर तो लागू ही नहीं हो रहे इस भौतिक जगत के नियम, तो कुछ और बताओ। तो आप प्रभुपाद के अनेक शिष्यों को देख सकते हो। एक इंटरव्यू मैं पढ़ रहा था प्रभुपाद के शिष्य का, उनको कैंसर हो गया था। किसी ने उनसे पूछा कि आपको बहुत कष्ट हो रहा होगा, अगर कोई आपसे बोले कि आपका ये कैंसर का रोग जो है वो हटा सकते हैं, और अगर आप कृष्ण भावनामृत को छोड़ दो, तो उन्होंने कहा किसी कीमत पर मैं कृष्ण भावनामृत को नहीं छोड़ सकती। एक कैंसर एक बार हुआ है, 100 बार हो गया, मैं जितना भी कष्ट हो रहा है मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं एक गुरु की शरण ले पाई और कृष्ण भावनामृत में जुड़ पाई। भगवान, अगर कोई भक्त भगवान की सेवा में जुड़ता है तो भगवान उसको उन कष्टों को सहने की योग्यता भी, क्षमता भी देते हैं। लेकिन अगर भगवान कष्टों को सहने की क्षमता दे रहे हैं तो भगवान कष्ट दे ही क्यों रहे हैं? नहीं, ये प्रश्न है कि नहीं है? भगवान कष्ट दे क्यों रहे हैं? भगवान कष्ट देते हैं, अपने भक्तों को दुख में डालते हैं भक्ति की महिमा बढ़ाने के लिए, भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए। अगर भगवान प्रभुपाद को कष्टों में नहीं डालते तो क्या हम प्रभुपाद की जय जयकार बोल रहे होते? आज हम बोलते हैं कि प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक हुए, फिर भी प्रभुपाद विचलित नहीं हुए। अगर हार्ट अटैक नहीं होते तो क्या हम बोल रहे होते ये बात? तो भगवान भक्तों को कष्टों में डालते हैं ये दिखाने के लिए कि भक्त इतने महान होते हैं कि उनको उन कष्टों की परवाह नहीं होती, वो उससे विचलित नहीं होते। तो प्रश्न ये है कि वास्तविक कष्ट है क्या? तो चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से ये प्रश्न पूछा था कि वास्तविक कष्ट क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है? तो रामानंद राय ने बोला कि भगवान की विस्मृति, भक्तों का संग छूटना ही सबसे बड़ा दुख है। अगर भक्तों का संग छूट जाएगा तो भगवान की विस्मृति हो जाएगी, हम लोग भगवान को धीरे धीरे भूल जाएंगे। जो लोग भक्तों के संग में नहीं रहते, धीरे धीरे उनकी भक्ति में वो उत्साह नहीं मिलता, कम हो जाता है उत्साह। तो रामानंद राय ने कहा कि भक्तों का संग छूटना ही सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा दुख है। तो हमें भी इस बात से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भक्तों के और गुरु के हमेशा आश्रय लेना चाहिए, अपने आप को महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। महत्वपूर्ण व्यक्ति सिर्फ कृष्ण और गुरु ही है, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए। तो जिस प्रकार हम कृष्ण को गुरु के बिना नहीं समझ सकते, उसी प्रकार हम गुरु को भी उनके शिष्यों के बिना नहीं समझ सकते। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा नहीं है जब हम गुरु की शरण लें तो इसका मतलब नहीं है कि अपने गुरु भाइयों का तिरस्कार करें। मैंने बहुत से भक्त देखे हैं जो गुरु के पीछे तो भागते हैं, अपने गुरु भाइयों की कोई ध्यान नहीं रखते। उनको लगता है ये बेकार है, मेरे जैसे है, मेरे से ही नीचे हैं, गुरु बहुत कमाल के हैं। तो ये भी अच्छा विचार नहीं है। अगर हम कृष्ण की बात करें तो कृष्ण को अगर हम समर्पण करेंगे तो हमें कृष्ण के साज समाज, कृष्ण के पार्षदों, कृष्ण के संगियों को भी समर्पण करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं है कि हम श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा और इतनी सखियां, मंजरियां, उनके सबको एक तरफ धकेल के हम भगवान कृष्ण की एकांत भक्ति कर सकते हैं, बिल्कुल भी संभव नहीं है। उसी प्रकार जब हम गुरु आश्रय की बात करते हैं, गुरु का संग लेने की बात करते हैं, गुरु को महत्व देने की, गुरु को सम्मान देने की बात करते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु को सम्मान नहीं देना है, हमें गुरु को सम्मान देना है, गुरु के साथ जो हमारे गुरु के गुरु भाई हैं उनको सम्मान देना है, और जो हमारे गुरु भाई हैं उनको भी हमें अच्छे से सम्मान देना है। हम सिर्फ सारे अपने गुरु भाइयों का तिरस्कार करके केवल गुरु की ओर अपनी श्रद्धा को केंद्रित नहीं कर सकते, वो बहुत ही निकृष्ट भाव है, अच्छा भाव नहीं है। वो अच्छा भक्त वही है जो गुरु का भी सम्मान करे और अपने गुरु के जो शिष्य हैं, जो उसके गुरु भाई हैं, उनका भी अच्छे से सम्मान करे। अगर ऐसा करेंगे तो भक्तों के समाज में रह पाना और भी आसान हो जाता है, लंबे समय तक भक्तों के समाज में रहा जा सकता है, और भक्तों के समाज में आने का जो प्रयोजन है, जो लक्ष्य है कि भक्तों के समाज में हम घुसे ही क्यों थे, भक्तों के समाज में हम घुसे थे कि हम अपने अनर्थ निवृत्ति करें, अनर्थों को हटाएं और शुद्ध मन से भगवान का भजन कर पाएं, तो वो सरल हो पाएगा, वो संभव हो पाएगा जब हम गुरु के साथ अपने गुरु भाइयों का भी सम्मान करेंगे। ठीक है, यही पे इसको विराम देते हैं, समय हो गया है। श्रील प्रभुपाद की जय। अगर किसी का प्रश्न है तो प्रश्न है कि हम एक ही शिक्षा को या लीला को हम बार बार सुनने में अपनी रुचि कैसे उत्पन्न करें। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमने सुन तो लिया लेकिन समझ नहीं पाए अभी तक, हम उसको अभी तक अपने जीवन में नहीं उतार पाए, तो हमें बार बार सुनना चाहिए ताकि हम उसको समझ पाए और ये भी जान पाए कि इस विचार को, इस शिक्षा को हमने अपने जीवन में कैसे उतारना है। जब तक हम किसी शिक्षा को अपने जीवन में नहीं उतार पाते, अभी तक नहीं उतारा है, इसका मतलब अभी तक हम उसको नहीं समझ पाए, तो इसीलिए उसको बार बार सुनने की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें बहुत ही विनम्र भाव से ये हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सुनना और समझना दो बिल्कुल बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। सुनते हम 1 करोड़ चीज़ें हैं, करते कुछ भी नहीं है, है ना। तो जब तक हम कर नहीं पा रहे हैं, जब तक अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं, तब तक हम वास्तव में उसको अभी तक नहीं समझ पाए हैं, हमने ठीक से नहीं सुना है, इसीलिए हमें बार बार उसको और अच्छे से सुनने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। प्रश्न ये है कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक कार्यों से अवकाश ले लेना चाहिए, लेकिन हमने ये भी सुना है कि भक्तों के जीवन में भौतिक कार्य कुछ होता ही नहीं है, है ना, तो इसको कैसे समझें। तो जब हम कहते हैं कि भक्तों के जीवन में कोई भौतिक कार्य नहीं होता, तो वो जो शुद्ध भक्त हैं उनकी बात हो रही है। शुद्ध भक्त जो हैं वो जो भी कार्य करेंगे भगवान के निमित्त ही करेंगे वो, है ना। जैसे एक भक्त ने एक भजन लिखा है कि अगर नित्यानंद प्रभु अगर शराब की दुकान में भी जाते हैं तो भी वो मेरे भगवान ही रहेंगे, मेरे स्वामी रहेंगे, तो भी वो नित्यानंद राय ही रहेंगे। हाँ, क्योंकि उसको ये भरोसा है कि नित्यानंद प्रभु अगर किसी शराब की दुकान में भी गए हैं तो वो उस व्यक्ति के कल्याण के लिए गए होंगे और कुछ निमित्त नहीं रहेगा, है ना। लेकिन ऐसा ये जो क्षमता है ये एक मध्यम अधिकारी और शुद्ध भक्त में मिलती है। हम में से ज़्यादातर लोग, जो हम लोग हैं, हम लोग अभी कनिष्ठ भक्त हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हम भौतिक कार्य नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम भगवान को सदैव याद रख पा रहे हैं, हम भगवान को सदैव याद नहीं रख पा रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट बात है, है ना। अगर कोई कहता है कि मैं भगवान को हमेशा याद रख सकता हूँ, तो या तो वो झूठ बोल रहे हैं या वो वास्तव में बहुत ही अच्छा भक्त है और हमारे लिए सम्माननीय है। लेकिन कनिष्ठ भक्त जो है, जो अभी भगवान को हमेशा याद नहीं रख पा रहा, उसको प्रयास करके योजना बनाकर गुरु और वरिष्ठ भक्तों के परामर्श से अपने जीवन को ऐसा ढालना चाहिए कि वो अधिक से अधिक भगवान का स्मरण कर पाए। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में भौतिक कार्य नहीं होते, कनिष्ठ भक्तों के जीवन में भौतिक कार्य होते ही हैं, करते ही हैं वो, है ना। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा भगवान को स्मरण कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हमें योजना बनाकर अपने जीवन को बदलना चाहिए ताकि हम अधिक से अधिक भगवान का स्मरण कर सकें। ठीक है, और किसी का प्रश्न? क्या प्रश्न है?